नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के सभी सदस्यों से सहयोग का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक 14 अप्रैल को होगी। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। प्रख्यात गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत अन्य लोगों ने गहरा शोक प्रकट किया। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण कानून पर सच्ची भावना के साथ अमल करने का समय आ गया है, ताकि 2029 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ हो। लोकसभा और राज्यसभा में सदन के नेताओं को लिखे पत्र में श्री मोदी ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे महिला आरक्षण कानून में संशोधन के मुद्दे पर एकजुट हों। इस कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है।
इन संशोधनों को पारित करने के लिए संसद के बजट सत्र की अवधि बढ़ाई गई थी। 3 दिन का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा। महिला आरक्षण अधिनियम से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी। इसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान 2023 में संविधान संशोधन के जरिए किया गया था। इस बीच भाजपा ने पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को संसद के इस विशेष सत्र में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इस अवधि में संसद में उपस्थिति अनिवार्य है और कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शशांक कुमार।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक 14 अप्रैल को बुलाई गई है। अपर सचिव अखिलेश कुमार सिंह की ओर से जारी पत्र के अनुसार 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय पटना में होगी। इधर भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में रिमोट से सरकार चल रही है। श्री यादव ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य में नए सीएम का फैसला भी दिल्ली से किया जाएगा।
कौन बनेगा, कैसे बनेगा, बस एक ही दो लोगों को तय करता है। इसमें दिमाग क्यों लगा रहे हैं आप लोगों को? जो दो लोग चाहेंगे वही होना है। दिल्ली से सरकार चल रही है, रिमोट से सरकार चल रही है, और जो भी बनेगा जनता का उसको मैंडेट थोड़ी है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव में हार के बाद भी पार्टी को होश नहीं आया है। श्री सरावगी ने आज पटना में कहा कि राज्य में नई सरकार के गठन के लिए एनडीए घटक दलों के बीच बातचीत जारी है।
सारे समय पर हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा का शपथ ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेता, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी, सब लोग मिलकर समय पर सारा काम हम लोग कर रहे हैं।
भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से विधान परिषद उपचुनाव के लिए एनडीए की ओर से जदयू के कन्हैया प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। कन्हैया प्रसाद राजद के सोनू कुमार राय को सीधी टक्कर देंगे। यह सीट पहले राधा चरण शाह के पास थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में श्री शाह के संदेश सीट से विधायक चुने जाने के बाद यह सीट खाली थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और कल 52 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में प्रवर्तन कार्रवाई जारी है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में 2700 से अधिक छापे मारे गए हैं। अब तक 2019 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया है और 56 वितरकों को निलंबित किया गया है। मंत्रालय के अनुसार 23 मार्च से अब तक छात्रों और प्रवासी श्रमिकों सहित कमजोर समुदाय को 13 लाख से अधिक 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 21 घंटे तक चली शांति वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि बातचीत में कोई समझौता नहीं हो सका। वार्ता के प्रमुख मुद्दों में पश्चिम एशिया में युद्ध विराम, अमेरिका में रोकी गई ईरानी संपत्तियों को रिहा करने और हरमुज जल डमरू मध्य खोले जाने से जुड़े विषय शामिल थे। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत भारतीय रेलवे का विस्तार हो रहा है। वर्ष 2025-26 में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 6000 किलोमीटर से अधिक के रेलवे नेटवर्क को कवर किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह विस्तार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 110% अधिक है। मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में नई लाइनों, दोहरीकरण, मल्टी ट्रैकिंग और अन्य कार्यों से संबंधित कुल 100 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। दिग्गज गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले का आज मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आशा भोसले को कल शाम सीने में संक्रमण और कमजोरी के कारण एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा। आशा भोसले अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती थीं और उन्होंने रोमांटिक गीतों और गजलों से लेकर जोशीले गानों तक कई यादगार गीते गाईं। एक श्रद्धांजलि।
आशा भोसले ने अपने 8 दशकों से भी अधिक लंबे कार्यकाल में विभिन्न भाषाओं में 12,500 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड किए। उन्होंने मराठी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और 1948 में चुनरिया फिल्म के साथ हिंदी फिल्म जगत में प्रवेश किया। लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और गीता दत्त जैसे दिग्गजों के बीच उन्होंने अपनी कला के दम पर एक अलग पहचान बनाई और अपने लंबे करियर के दौरान कई प्रमुख अभिनेत्रियों के लिए अपनी आवाज दी। उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 18 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, 9 फिल्म फेयर पुरस्कार, जिनमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है, तथा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए रिकॉर्ड 7 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए। वर्ष 2000 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2011 में उन्हें संगीत इतिहास की सबसे अधिक रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में मान्यता दी। उनके निधन से संगीत जगत में एक ऐसी कमी पैदा हो गई है जिसे भरना असंभव है।
महान गायिका आशा भोसले के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और फिल्म जगत के कई कलाकारों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मधुर और सदाबहार आवाज से दशकों तक भारतीय संगीत को समृद्ध किया। राष्ट्रपति ने कहा कि उनका निधन संगीत प्रेमियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और उनका संगीत अमर रहेगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आशा भोसले भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित और बहुमुखी पार्श्व गायिकाओं में से एक थी। उन्होंने कहा कि दशकों तक उनके असाधारण संगीत में सफर ने देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। श्री मोदी ने कहा कि उनके गीत सदैव गूंजते रहेंगे। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा भोसले के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना भारतीय संगीत के एक युग का अंत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां आशा भोसले को भारतीय संस्कृति के एक प्रतीक के रूप में हमेशा याद रखेगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सहित अन्य पार्टियों की ओर से भी आशा भोसले के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई है। प्रख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है।
हम सभी भारतवासियों ने पूरे विश्व के कला प्रेमियों के दिलों पे राज करेंगी, वो अनंत काल तक जाना सबको है। और ये भी देखिए क्या संयोग है कि लता दाई भी 92 वर्ष की आयु में छोड़कर गईं। बहुत सारे कला प्रेमी आज बहुत दुखी हैं और मन से उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि मैंने उनको लाइव सुना कई बार और उनसे भेंट हुई, उनसे बात करने का अवसर मिला और वो क्षण मैं अपने जीवन के सबसे अनमोल क्षण मांगती हूँ।
प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास के डेहरी में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है।
अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान दिन के समय राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
सिवान के महावीरपुरम में प्रज्ञा चेतन प्रवाह के तत्वधान में गायिका आशा भोसले के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके गीतों को गाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने औरंगाबाद जिले के बारून में समाज सेविका अरुण लता सिन्हा के प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने लोगों से राष्ट्र समाज के लिए बेहतर काम करने की अपील की। कटिहार के जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि जिले के तीनों अनुमंडलों में 54 गैस एजेंसियों के पास 13,000 से अधिक घरेलू सिलेंडर उपलब्ध है। रोहतास जिले के नगर थाना क्षेत्र में सासाराम बक्सर मुख्य मार्ग पर मुरादाबाद पुल के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। भागलपुर जोन के पोस्टमास्टर जनरल मनोज कुमार ने बेगूसराय और खगड़िया के डाक विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 350 डाक कर्मियों को आज सम्मानित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के सभी सदस्यों से सहयोग का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक 14 अप्रैल को होगी। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। प्रख्यात गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत अन्य लोगों ने गहरा शोक प्रकट किया। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।